ओम शांति। आप सबका आज के इस सुंदर सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजाएंगे। 2 दिन से आप यहां पर सेशंस अटेंड कर रहे हैं और उन सभी सेशंस में आपको बहुत सुंदर बातें ज्ञान की दी जा रही हैं, लेकिन अब इस सेशन के दौरान आप हमारे अनुभवी जो गेस्ट होस्ट बनकर यहां पर आए हैं, उन सभी के ज्ञान में चलने का बहुत सुंदर, उनके जीवन की प्रैक्टिकल जो अनुभव रहे हैं इस ज्ञान में, उनका अनुभव आज आप इस मंच से सुनने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये ज्ञान जो आज हमने यहाँ पर ज्ञान सरोवर में आकर हम ले रहे हैं, शायद फौज में रहते हुए इसे प्रैक्टिकल जीवन का हिस्सा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज इस मंच से, आज जब आप सुनेंगे कि हमारे इतने अनुभवी वक्ताओं ने, इतने अनुभवी हमारे जो बीच ही फौज के ऑफिसर्स बैठे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कैसे इन धारणाओं को अनुभव किया और उस परमात्म शक्ति को लेकर वो उसी फौजी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, तो आज जरूर इस मंच से जब आप इन सभी बातों को सुनेंगे तो आप भी जरूर इंस्पायर होंगे कि कैसे उस परमात्म शक्ति के मदद से हम अपनी फौजी लाइफ में होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस सुंदर मंच के लिए, इसको सुशोभित करने के लिए सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारी दैवी बहन, दिल्ली से विशेष इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। आप फॉर्मर कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स रहे हैं, श्रीमती देविका रघुवंशी जी। जोरदार तालियां। मैंने दैवी बहन इसलिए बोला है क्योंकि आप पिछले 6 वर्षों से हमारे इस ईश्वरीय ज्ञान में बहुत सुंदर तरीके से चल रहे हैं। आप इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर भी होते हुए आपने हमारे पूरे ज्ञान को स्टडी किया और उस परमात्म शक्ति के बल से इतने इम्पोर्टेंट असाइनमेंट के बाद भी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस ज्ञान को उतारा, तो बहुत ही सुंदर आपका अनुभव है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे फॉर्मल वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, हमारे भ्राता सतीश गौरमडे जी। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। आप ही की तरह सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के कोर्स के लिए 2011 में ऐसे ही आप ही के बीच इस कोर्स के दौरान बैठे थे। 2011 में आपको इस कोर्स से मालूम पड़ा कि कैसे इस सुंदर ज्ञान को अपने फौजी जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं, और 2011 से अभी तक आप पूरी तरीके से इस ईश्वरीय ज्ञान को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हमारे भाई जी का मंच पर एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरबीर सिंह भाई जी को। आप रोहतक से पधारे हैं, आपका भी भाई साहब इस सुंदर मंच पर बार बार अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। भाई साहब इस ईश्वरीय ज्ञान में अपने पूरे फैमिली के साथ चल रहे हैं और बहुत सुंदर आपका कश्मीर में बहुत सारे एनकाउंटर के दौरान आपकी ड्यूटी कश्मीर जैसे फील्ड फॉर्मेशन में रही, और उन सारे एनकाउंटर्स के बावजूद आपने सफलता वहां पर प्राप्त की। इसके लिए विशेष आर्मी चीफ ने आपको दिल्ली आकर विशेष सम्मान दिया। तो ऐसे हमारे ब्रिगेडियर हरवीर भाई जी का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अभी क्वेश्चंस की श्रृंखला को शुरू करते हुए मैं सबसे पहला प्रश्न हमारी दैवी बहन रघुवंशी जी से पूछना चाहूंगी। सिस्टर, मैं ऐसा समझती हूं, क्योंकि हमारी ऑडियंस जानना चाह रही थी कि आप इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट पर दिल्ली में बने रहे, उसके बावजूद आपको जब इस ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया गया, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रियल सोल, सुप्रीम सोल का ज्ञान दिया जाता है? क्योंकि आप समझते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर परमात्मा के विषय में बताया जाता है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बने रहकर आपने इस ईश्वरीय ज्ञान में अपना पूरा समय दिया सेंटर पर जाकर, तो आपको क्यों लगा कि इस ईश्वरीय ज्ञान में भरपूर सच्चाई समाई हुई है? प्लीज आप बताइए।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। दीदी ने पूछा है तो ये भी एक बहुत बड़ी जर्नी है, जो हम कहते हैं जीवन एक जर्नी है, तो हर स्पिरिचुअलिटी की भी हमारी अपनी जर्नी है और सबकी अपनी अपनी होती है। जैसे हर एक की जीवन कहानी अपनी अपनी होती है, तो हमारी जर्नी भी अपनी एक यूनिक जर्नी है। तो ये जर्नी की शुरुआत तभी हो गई थी, वैसे तो ऐसा लगा सारी जीवन में, आप जब हमारे एडमिरल गोरमाले जी को सुनेंगे, उनका प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो वो भी यही बताएंगे कि जीवन में एक जब हम परमात्मा से पहले से, जैसे हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करते हैं। आप सब भी महसूस करते होंगे, आपको भी जीवन में कई बार लगता होगा कि अरे पता नहीं क्या से मैंने पुण्य कर्म किए थे कि मुझे ये इंसान मिल गया और मेरा काम करके चला गया, या पता नहीं क्या हो जाता यदि ऐसा हो जाता, पर कोई ऐसी शक्ति थी जिसने मुझे बचा लिया। ये मैं मानती हूं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, और हम में से कोई भी यहां जो बैठा हुआ है वो ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे उस चीज का आभास अपने जीवन में नहीं हुआ। तो मुझे भी अपने जीवन में, सारे जीवन में हमेशा ये एक एहसास रहता था कि मैं किसी की छत्र छाया में हूं, कोई मेरे को गाइड करता है, कोई मुझे प्रोटेक्ट करता है, कोई मेरे साथ हमेशा चलता है। ऐसी एक अनुभूति मेरे को हमेशा, एक छत्र छाया की अनुभूति तो हमेशा से रहती थी, बचपन से ही रहती थी। और परिचित जो कहते हैं कि परमात्मा की खींच जब शुरू होने लगी, तब मैं मिनिस्ट्री में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, पहले एडिशनल एफए और ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी नेवी के पोस्ट पर आई, और शायद मेरी काबिलियत के हिसाब से और जो मैं बन सकती थी उसके हिसाब से, वो मेरी एक सबसे वर्चस्व कह सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कार्य के लिए मुझे, मैं वहां पहुंच चुकी थी, जैसे कहते हैं पिनेकल ऑफ माय कैरियर, मेरी काबिलियत के हिसाब से। तो उसके रहते जैसे वहां पे बहुत क्लोजली जब मैंने देखना शुरू किया, मिनिस्टर्स के साथ में काम करना शुरू किया, 3 मिनिस्टर्स के साथ मैंने काम किया, परिकर साहब के साथ तो बहुत क्लोजली काम किया, निर्मला सीतारामन मैडम के साथ में बहुत क्लोजली काम किया, उससे पहले थोड़े छोटे से समय के लिए मैंने अरुण जेटली साहब के सामने भी साथ में भी काम किया, तो उनके साथ में काम करने का मौका मिला। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स जो सेक्रेटरीज थे, कई एक सेक्रेटरीज के साथ में, क्योंकि सेक्रेटरीज का आपका टेन्योर करीब 2 साल का होता है, तो आपके 5 साल के टेन्योर में आप कम से कम 3 सेक्रेटरीज के साथ में काम कर लेते हैं, और भी बहुत सारे आपका इंटरेक्शन बहुत बहुत विस्तार रूप में हो जाता है। तो उनको देखते, जीवन को देखने का, कई एक देशों में भी घूमने का मौका मिला, तो वहां जाकर के उन लोगों को भी जैसे देखा, बहुत क्लोजली देखा, एक उनकी मन स्थिति को देखा, जो दूर से ऐसे दिखाई देता था जैसे वो बहुत ज्यादा खुश हैं या बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे आप खरोच करो किसी को तो पता चलता था कि अंदर बहुत दुख है, अंदर बहुत जो बहुत दूर से जो चीज दिखाई दे रही है वो ऐसी है नहीं, अंदर से कहीं तड़प है, कहीं एक कमी है सबके। और वहीं से जैसे, और जब सब बड़े ऊंची ऊंची पोजीशन के लोगों को भी जब देखने लगी, तो महसूस होने लगा जैसे ये संसार असार है, एक अपने आप से वहां बैठे, एक जैसे ऐसे जैसे एक वैराग्य सा, एक जैसे उचाट आ जाती है ना कि आपको अपने जो सोचते हो वहां तक आप पहुंच गए हो, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपको जीवन में सोचते थे वो सब कुछ आपको मिल गया है, आप पोजीशन पे भी पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी एक जीवन में एक कमी, एक उचाट ऐसी शुरू हो गई थी। तो जब मिनिस्ट्री से मैं बाहर निकली तो मैंने सोचा, अपने बेटे को कहा कि मैं अब ये जीवन, मतलब मुझे लगता है कि जो मेरी ड्यूटीज थी ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं, अब शायद किसी और, आई वॉन्ट टू गिव अ न्यू डायमेंशन टू माई लाइफ। मुझे देखती हूँ परमात्मा, इतनी उम्र हो गई है, तब शायद मैं 55 साल की थी, और मुझे लगने लगा कि ये उम्र ऐसे ही बीत रही है और ऐसे ही चली जाएगी ये जीवन में, मतलब ऐसे एक दिन होगा कि मैं दुनिया से भी चली जाऊंगी, लेकिन पाया क्या, जैसे ऐसा लगने लगा कि कुछ भी नहीं पाया। तो परमात्मा की खोज शुरू हुई। लिटरली मैं बताती हूँ कि मैंने अपने बेटे को कहा कि मैं एक साल तक ना भगवान को खोजती हूँ, तो जो जो पॉसिबल मीन्स होते हैं भगवान को खोजने के वो कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो होता है ना, उसमें हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ पढ़ें, शास्त्र पढ़ें और किताबें पढ़ें तो भगवान का नॉलेज मिल जाएगा, भगवान क्या है पता चल जाएगा, तो वो पढ़ाई शुरू कर दी। तो उसमें बहुत सारा बुद्धिज्म की भी बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ ली, मैं बाकी की संस्थाएं जो थी उनके साथ में भी कुछ रजिस्ट्रेशन करके उनका भी मटेरियल मेरे पास में आने लगा, वो भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद में लगा कि गीता पढ़े बिना तो ये शरीर मेरे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि गीता तो जैसे कहते हैं कि अल्टीमेट है भागवत पढ़ना, और बिना भागवत पढ़े तो शायद मोक्ष भी नहीं मिलेगा, तो गीता भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो गीता भी पढ़ी, और पर मैं जितना ज्यादा पढ़ती चली गई उतने ही ज्यादा मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे प्रश्न आते चले गए, और उन प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने विपश्यना के लिए भी मैं गई 10 दिन के लिए, वहां भी सब कुछ किया, लेकिन वहां भी यही क्वेश्चन, एंड ऑफ द 10th डे आई सेड इन सब में भगवान कहां है। तो भगवान की जो एक खोज थी वो मुझे इधर उधर बहुत भटका रही थी, और जितना पढ़ रही थी गीता को पढ़ने के बाद में तो जैसे यहाँ प्रश्नों का जैसे एक जंजाल शुरू हो गया, और उसका आंसर कहीं नहीं मुझे मिल रहा था। करते करते एक दिन जैसे मैंने कहा कि अरे हम शिवानी दीदी को सुनते हैं, मैंने अपने बेटे से कहा कि शिवानी दीदी को मैं बहुत सुनती थी, उनसे प्रभावित भी थी, और उनकी जो रूहानियत थी उनके अंदर वो मेरे को बहुत प्रभावित करती थी। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो ब्रह्मा कुमारी इसकी संस्था में भी जाके देख लेते हैं कि वहां पे क्या होता है, ये क्या करते हैं वहां पे। और मैंने कहा कि अपने बेटे से कि और कुछ ना हो लेकिन इस संस्था से जितनी भी जुड़ी हुई बहने हैं उनके चेहरे पे एक ऐसा तेज पाते हैं हम, मैं देखती हूं कि वो और कहीं मुझे दिखाई नहीं देता है, कुछ बात है इस ऑर्गेनाइजेशन में, चलो ढूंढते हैं, जाके ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है इस चीज में, ये यूनिकनेस यहाँ क्या है। तो जैसे ही संकल्प आया वो उसी समय में बेटा कहता है बस पास में 1.5 किलोमीटर पे सेंटर है चलो। तो हमने तो टाइम भी नहीं देखा क्योंकि जुनून था भगवान को ढूंढने का, तो बिना टाइम देखे हम पहुंच गए सेंटर पे भगवान को ढूंढते ढूंढते, और वहां पे फिर दीदियों से टाइम फिक्स हुआ और हमारी 7 दिन की क्लास हुई, बेसिक क्लास हुई। फिर दीदी ने कहा कि आपको हर दिन ये सुनने के लिए मुरली आना है, तो क्योंकि अंदर से इतनी जागरूकता थी उसको पाने की कि ये कौन है क्या है। और जब वो एक वैराग्य का जो समय चल रहा था उस समय में ऐसा लगता था, बहुत सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होता था कि परमात्मा, और एक घटना जिसने मुझे बहुत उस समय में बहुत ज्यादा पीड़ा में डाला था वो आप सब जानते हैं, घटना हुई थी दिल्ली में दिल्ली रेप केस, और बहुत जो उस समय में कहते हैं ना कि एक जैसा लग रहा था जैसे दुनिया ऐसी बन गई है जहां की सड़कों के ऊपर राक्षस घूम रहे हैं, इतनी मैं डिस्टर्ब हुई उस घटना से, और मुझे ऐसा समझ में आता था कि परमात्मा तूने ये दुनिया क्यों बनाई है, और यदि ऐसी दुनिया तूने बनाई है तो अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, और ये सोच सोच करके कि मैं शरीर छोड़ करके जाऊंगी और वापस इस शरीर वापस यहां आके जन्म लूंगी, तो मैं बार बार परमात्मा से ऐसे कहती थी कि मुझे इस दुनिया में वापस जन्म नहीं लेना है। और सोचती थी कि तूने मुझे क्यों बनाया है, ये दुनिया क्यों बनाई है, और बनाई है दुनिया तो ऐसी क्यों बनाई है, और उसके बाद में तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया है, जब सारी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खा रहे पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, पर मुझे क्यों नहीं इस इंजॉयमेंट में मजा आता है, तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया है। इतनी उसके साथ में एक सूक्ष्म लेवल पे इतनी साइलेंस में वो बातें होती थी, शायद शिकायतें ही शिकायतें होती थी। और यदि इस दुनिया का करेक्शन होना है तो कौन सा छोर पकड़े जहां से ये करेक्शन इस दुनिया का हो, ये दुनिया किस रास्ते पे जा रही है। तो आप देखेंगे कि एक ऐसा सृष्टि का ऐसा चक्र मेरे चारों तरफ घूम रहा था जो मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जा रहा था, और वो डायरेक्शन पढ़ने से, सब कुछ किताबें पढ़ने से, या जो इंटरनेट देख करके बहुत तरीके की योग करना शुरू कर दिया, सुबह 3 बजे उठने शुरू कर दिया, और मेडिटेशन की जो टेक्निक्स दिखाई जाती हैं वो करनी शुरू कर दी, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जब मैं पहुंची ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पे और वहां मेरे जब मुरली सुनना, हम 1 घंटे का ज्ञान सुनते हैं वहां पे, जब सुनना शुरू किया तो धीरे धीरे जैसे जो यहां प्रश्नों की जो उलझन थी, जो प्रश्नों के मुझे जवाब चाहिए थे, ये दुनिया क्यों बनी है, ये दुनिया का आगे क्या होगा, ये ऐसे इतनी पतित ये दुनिया क्यों हो गई है, अब उसका करेक्शन कैसे होगा, ये परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, मुझे अपने सत्य स्वरूप का परिचय मिला और परमात्मा के सत्य स्वरूप का परिचय मिला, और फिर उसको याद कैसे करें। सबको कहते थे मेडिटेशन करो, तो आई यूज टू आस्क माइसेल्फ कि ये कह रहे मेडिटेशन करो, बट व्हाट डू आई मेडिटेट अपॉन, किसके ऊपर मैं मेडिटेट करूं। तो कहते थे नहीं, आप शून्य में चले जाइए। तो ऐसे शून्य में कैसे जा सकते हैं, जब शरीर के अंदर सारे शरीर के ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो आपका दिमाग भी तो काम करेगा ना, आपके तो संकल्प तो रुकते नहीं है, तो ये कैसे शून्य में जाया जाता है। पर कोशिश बहुत की थी शून्य में जाने की, लेकिन शून्य में जाने से परमात्मा कैसे मिलेगा ये नहीं समझ में आता था। तो जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पे आए और राजयोग का मेडिटेशन की टेक्निक सीखी कि कैसे हम अपने संकल्पों की शक्ति से आत्मा, अपने परमात्मा जो सीरियल पिता है हमारा, उसे कैसे कनेक्शन जोड़े, कैसे वो हम उसको अपना बना लें, और वो शायद मेरे पूर्व जन्म के किसी पुण्यों का फल था कि मुझे ज्ञान, जैसे एकदम मुझे परमात्मा ने अपनी गोदी में बिठा लिया। और उसके बाद में फिर मेरी जो, फिर तो लगा कि टाइम, जब समझ में आने लगा कि टाइम तो बहुत कम रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो फिर जैसे दीदी ने कहा कि वो स्टडी करनी थी, मुझे लगा कि यदि परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है तो मैं इस शरीर को नहीं, मैं आत्मा इस शरीर को, ये एक एक शब्द जो उसके वाक्य जो निकले हैं उसको पढ़े बिना मैं ये शरीर नहीं छोड़ सकती। तो बस ऐसा जुनून, जैसे भगवान पढ़ा रहा है और हम पढ़ रहे हैं, और ऐसा जुनून चढ़ गया कि वो हम जो कोविड का पीरियड था उसमें थोड़ा ऑफिस में भी कम जाना होता था, 2-3 घंटे के लिए ही जाना होता था, और बाकी समय तो कम स्टाफ भी कम आता था, कोई में विजिटर्स भी नहीं होते थे, घर में भी कोई नहीं आता, तो जैसे प्रकृति भी एक मेरा हेल्प कर रही थी उस स्टडीज में। तो जब ये ज्ञान का अध्ययन किया तो समझ में आया, और यहाँ के सारे प्रश्न खत्म होकर के हम प्रसन्न चित्त बन गए, प्रश्न खत्म हो गए हमारे। तो मुझे लगा कि यही एक सही जगह है जहाँ की आत्मा के सत्य स्वरूप का, हमारे अपने सत्य स्वरूप का, और उस परमपिता परमात्मा के सत्य रूप का हमें परिचय मिलता है। फिर परिचय तो मिल गया, लेकिन उससे कैसे कनेक्शन करें उसका हमको एक टेक्निक सिखाई जाती है, और जब हम उससे कनेक्शन जोड़ लेते हैं उसके बाद में सारा काम इतना इजी हो जाता है। जैसे वो कहता है तू मुझे याद कर, बाकी तुझे सारे याद करने लग जाएंगे, और तू मेरा काम कर, तेरे काम मैं कर दूंगा। इतने बड़े बड़े काम मेरे जीवन के जैसे सहज रूप से होने लग गए। कोई मेहनत, जीवन से जो एक मेहनत होती है ना हर काम को करने की, वो मेहनत जैसे डिसअपियर हो गई। मेहनत शब्द जो है मेरे जीवन से खत्म हो गया, क्योंकि परमात्मा का कहते हैं ना डबल फोर्स, और उसकी फोर्स का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो उसकी फोर्स क्या है। वो आपके साथ जुड़ गया है, वो आपके साथ मानसिक रूप से आपके आपकी बुद्धि योग के साथ में आपके साथ जुड़ा हुआ है, कंबाइंड है, तो आपके सारे काम बड़े सहज हो जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे उस आदमी को मेरे लिए ही उस दिन वहां बिठाया गया है, मेरा काम करने के लिए ही उसको बिठाया गया है। आपको लगता है कि आप जहां जाते हैं वहां लोग बाग आपको इतनी पॉजिटिविटी से देखते हैं। कई बार ऐसा होता था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते थे, किसी कार्य को करने जाती थी, लेकिन वो सामने वाले की बुद्धि परिवर्तित हो जाती थी कि उसकी नजर ही नहीं जाती थी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। यदि जाती भी थी तो वो जैसे जैसे एक स्टेटमेंट बोलता था और उसके पास में कहता था नहीं मैं ही जेरॉक्स कर देता हूं, नहीं से है ना ये, और आपके काम हो जाते थे। तो मतलब मैं भी बाहर आके सोचती थी कि और ऊपर कहती थी कि अच्छा ओके गुड यू आर विद मी। तो मैं आपको ये मेरे मतलब पिछले 6 वर्षों का ये अनुभव है कि 6 वर्षों से पहले यदि मेरा जीवन बिल्कुल अलग था, यहाँ कुछ लोग मेरे डिपार्टमेंट से यहाँ बैठे हुए हैं वो जानते हैं मेरा स्वभाव भी कैसा था और मेरी दिनचर्या भी कैसी थी और आज मैं क्या हूँ उसी का चमत्कार है। सो दिस इज हाउ आई फाउंड ब्रह्मकुमारीज टू बी द ओनली प्लेस वेयर आई कुड गेट माय सत्य स्वरूप एंड सत्य ज्ञान। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर अनुभव देविका जी का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूंगी हमारे भ्राता गौरमोड़े जी से। भाई साहब, आप जब 2011 में पहली बार कोर्स SSW कोर्स के लिए ज्ञान सरोवर आप आए, आपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ वहां बैठकर ये कोर्स अटेंड किया, तो 2011 से लेकर अभी तक 2025 की ये बहुत बड़ी जर्नी रही, और दिल्ली में बहुत क्लोजली आपको देखा कि कैसे डेली रूटीन में अमृत वेला को आपने मेंशन किया, सात्विक फूड ये आप जरूर लेते हैं, और अपनी फैमिली के साथ इस ज्ञान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सालों का 2001 से और 2025 तक आपका खुद का अनुभव इस स्पिरिचुअल यात्रा में क्या रहा, जस्ट शेयर टू अस प्लीज।
ओम शांति। तो मैं तो यही कहूंगा जैसे देवी का मैडम ने भी बताया कि मेरी जो फैमिली थी, माताजी बहुत धार्मिक वृत्ति की थी, तो घर में एक धार्मिक वातावरण तो पहले ही था, तो पर हम पूजा करते थे और मैं देखता था कि मेरी माताजी तो बहुत घंटे घंटे पूजा करती थी हाँ, और फिर खाना बना के देती थी, तो वो ठीक था और हम भी उसी तरह से भगवान को पूजते थे। और अबाउट पहले मैं गणेश जी को मानता था, फिर श्री राम, फिर उसके बाद कृष्ण और इस्कॉन से जुड़ गया था, फिर उधर बहुत मंदिर में जाते थे, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया था, तो सुदर्शन क्रिया रेगुलरली करता था मैं, ईशा योगा भी किया था, ये सब चल ही रहा था। और 2011 में मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ पर्सनल था, तो जहां आप सब जानते हैं डायरेक्टर ऑफ पर्सनल सारी पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स सब वो करते हैं, और पूरा मीन्स लगभग 60,000 नौसैनिक का पूरा ये संचालन और 11,000 ऑफिसर्स का। तो मेरे को नॉमिनेशन के लिए आता था कोर्सेस वगैरह के लिए, तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया 2009 में, तो पहली बार नॉमिनेशन के लिए आया, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का कार्यक्रम था तो उसके लिए मैंने नॉमिनेट किया लोगों को, फिर दूसरी बार आया फिर से नॉमिनेट किया, फिर मैंने सोचा ये कोर्स क्या है मैं भी पता कर लूं, मुझे तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में, तो मैं फिर अपने बॉस से कहा कि मुझे भी नॉमिनेट करो मैं भी जाना चाहता हूं। तो 2011 में पहली बार मैं आपकी तरह ही इधर ज्ञान सरोवर में ही पहली बार आया, तो जैसे ही इधर इस परिसर में प्रवेश किया तो मुझे लगा कुछ अलग सा है, क्योंकि एक तो इसका वातावरण ही इतना सुंदर था, और आप लोगों को भी पता चला होगा जब इधर आए कि क्या वातावरण है। और इधर जो भी भाई बहन मिले सभी हर्षित मुख, सभी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तरह तरह का काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं। और तब तो मैं कमोडोर था और नेवी में काफी सर्विस भी थी, तो पता है नौसेना में भी काम अच्छी तरह से होता है, एफिशिएंटली होता है, अनुशासन होता है। लेकिन इधर जो देखा मैंने, स्व अनुशासन है, सेल्फ मोटिवेशन है, और किसी तरह खुश रह के काम कर रहे हैं, और सब वॉलंटियर्स हैं इतना, तो वो मुझे कुछ अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये सही चीज है, और धीरे धीरे, पर समय नहीं था सोचने के लिए ज्यादा, कोर्स करके चले गए और फिर सोचने लगे। तो पर स्क्वाड लीडर गाबा जो थे, चेयरपर्सन हैं अभी हमारे सिक्योरिटी सर्जन, उन्होंने थोड़ा फॉलोअप भी किया हमसे कि आपको कैसे लगा। फिर कर्नल सती हमको मिलने लगे, और आके फिर कर्नल सती ने कहा कि आप कोर्स कर लो। तो हमने कहा कोर्स करने के लिए तो समय नहीं है, हमें कोई समय था ही नहीं। ऑफिस में मैं रोज सुबह जाता था 8 बजे, रात को 9-10 बजे तक काम करता था, फिर वापस घर, फिर इसी तरह, और फाइल्स सैटरडे संडे भी काम करता था, तो इस तरह चल रही थी कहती। तो उन्होंने कहा कि आप कोर्स नहीं कर सकते, तो मैं अपने आपके घर आके कोर्स करवाता हूँ। तो वो हमारे घर में आए और सैटरडे संडे संडे को हमने कोर्स किया। फिर वो तब मुझे ज्ञान और भी मिल गया, मीन्स इधर से तो बहुत अच्छा लगा था, और उस समय मैं इस्कॉन भी फॉलो कर रहा था, तो अब लग रहा था कि उधर जाना चाहिए। तो कभी मंदिर में जाता था, फिर कभी ये सुनता था, फिर ये ज्ञान पढ़ रहा था, फिर ऐसे लग रहा था कि उसको कैसे छोड़ दूं। वो 108 माला जपनी पड़ती थी रोज, तो वो भी करना है, और फिर इधर भी ये करना है, तो लग रहा है और काम भी करना है। तो ये सब सोच के फिर धीरे धीरे ये ज्ञान जैसे मिलता गया, तो पता चलता गया कि यही ज्ञान है, और सब भी एकदम सरल है, सहज है, और सफल बनाने की विधि है। क्योंकि इधर सही में भगवान और परमात्मा का जो परिचय मिला वो यहां मिला। वहां पर कर रहे थे भक्ति, सब कर रहे थे, ये थी शुद्ध भोजन भी खाते थे, उससे पहले ही मैं वेजिटेरियन बन गया था, लेकिन इतना ये नहीं था जब जिंदर से हो गया। तो फिर मैंने शुरुआत कर दी धीरे धीरे। तो हमारे यहाँ वैसे हरिनगर सेंटर से जुड़ गया, तो उधर शुक्ला दीदी की पालना मिली, सारिका बहन, उधर प्रियंका बहन, उधर बहुत सारे भाई बहन भी थे उनसे मिला। फिर इधर के जो भाई बहन हैं, ये ग्रुप कैप्टन सचिन, मुझे पहली बार जब मैं इधर आया था 2011 में, तो मैं प्रदर्शनी में चल रहा था, तो उधर ग्रुप कैप्टन सचिन मिल गए मुझे। फिर वो बात करते करते उन्होंने बताया कि ये है हमारे साथ, और उसमें फिर उन्होंने मुझे अपना नंबर ले लिया, फिर उससे कंटिन्यूस मैसेजेस भेजते रहे। तो वो भी आता रहा ज्ञान, कभी मैं पढ़ पाता था, कभी नहीं पढ़ पाता था, कभी ये करता था। फिर धीरे धीरे 2000 तो उस समय फिर पीडीओपी से उधर ही प्रमोशन होके मेरा एसीओपी एचआरडी बन गया, असिस्टेंट चीफ ऑफ पर्सनल एचआरडी। तो वो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, और ज्यादा काम भी था और अच्छा काम भी था। तो इसमें ये था कि सब ये मिल रहा है, लेकिन चुनौतियां काफी आती थी, डीलिंग विथ पीपल, डीलिंग विथ बॉसेस हु आर डिफिकल्ट, डीलिंग विथ सबको खुश करना तो मुश्किल हो जाता है। और पर्सनल ब्रांच में तो यही होता है कि सबकी ट्रांसफर करनी है, सबका किसी का प्रमोशन करना है किसी को, तो कुछ को कर पाएंगे कुछ को नहीं कर पाएंगे, जो डिजर्विंग है वो होंगे, पर लेकिन जो डिजर्विंग है उनको लगेगा कि सही है, लेकिन जिनको नहीं हुआ तो वो सोचेंगे कि कुछ गलत है। तो सही तरीके से, पर ये ज्ञान से मुझे बहुत अच्छा ये पता चला कि हम सारा कार्य पूरी मेहनत से और अच्छी तरह से कर सकते हो, निष्ठा से कर सकते हो, और कोई भी निर्णय लेना है ले सकते हो, और क्योंकि भगवान हमारे साथ है। और ये जैसे देविका मैडम ने भी बताया, पहले भी मुझे ऐसे बहुत सारे ये हो रहे थे कि कोई ना कोई तो मदद कर रहा है मुझे, और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे जिसमें कहां पर कहीं सही बहुत कठिन कठिन निर्णय लिए, लेकिन ले लिए और सही भी हो गया। तो पर मैं सोचा था मैं अकेला तो नहीं ले सकता था ऐसे ही, ये सही कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन है। पर इधर आके फिर पता चला, तो इधर से जब मैं एसयू पे चाड़ी था, उसके बाद हम कारवार में मेरी पोस्टिंग हो गई एज फ्लैग ऑफिसर कर्नाटका, और वो एशिया का सबसे बड़ा बेस है, 11,330 एकड़ उस एरिया है, तो नेवल बेस और नया बेस, और बहुत सारे यूनिट्स, लेकिन उधर संख्या बहुत कम थी क्योंकि नया बेस था, और उस बेस को देखना एक ये था, और सभी यूनिट्स अपने अपने कार्य में लगे थे और एक दूसरे से कभी कोई बात भी नहीं करते थे, ऐसे टाइप था उनका। तो जब मैं उधर गया तो मुझे सबसे पहले जा कि उधर खुशी और ये लानी है, तो उनको पहले बात बात किया, फिर मैंने SSW विंग के पूरे को बुलाया उधर और चार दिन का उधर प्रोग्राम कराया सबके लिए। और उस समय 2014 का समय था, 2015 का समय था, तो ज्यादातर लोग मानते भी नहीं थे और किसी को जाके बोलना ब्रह्म कुमारी के बारे में तो अच्छा ही नहीं होता। और नौसेना में खासकर रिलीजियस बात नहीं कर सकते, शिप में भी कोई भी किसी भी रिलीजन का फॉलो नहीं कर सकते। अपने शिप में जब रहते हैं तो किसी का चित्र भी नहीं लगा सकते, चाहे आप कृष्ण को मानते हो, चाहे क्राइस्ट को मानते हो, चाहे किसी को भी मानते हो, तो ये दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, कोई नहीं। पर लेकिन और ना बात कर सकते हो, तो फिर उस समय इस ज्ञान को, लेकिन जब मैंने इस ज्ञान को मान जाना तो मुझे लगा कि ये है जो बहुत अच्छा ज्ञान है जो दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए और सबके साथ। तो फिर वो जब हमने कार्यक्रम करवाया उधर कारवार में, और हमारी टीम इधर से आई थी, स्कॉन्डलर गाबा, कर्नल सती, कैप्टन शिव सिंह और बहुत बलराम भाई, सूरज भाई, मुझे बहुत दीपा दीदी ऐसे आए थे, तो ये सब मिलके आए और उन्होंने जब प्रोग्राम करवाया तो पूरा बेस भी बहुत ये हुआ। तो उधर मैं 6 महीने था सिर्फ, हर महीने में एक एक या दो VIP आते थे, CNCs, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर, एक नया यूनिट कमीशन किया, तो सारे कार्य इतने आसानी हो गए कि उधर एक VIP विजिट होता था तो एरिया इतना बड़ा था कि सुबह एक तरफ से लोग घास काटना शुरू करते थे और घास काटते काटते जब एंड तक पहुंचते थे तो आगे वाली घास उग जाती थी, तो और उसमें फिर VIP विजिट आ रहा है तो वो घास काटते रहो, और उसमें भी लोगों को खुश रखना है और ये भी करना है और सब सही करना है। लेकिन वो लोग इतने खुश थे काम करने में कि रोज शाम को भी खुशी से काम करते थे और कभी ये नहीं। तो मैंने कहा कि ये सब परमात्मा करवा सकता है, तो इसी तरह। और वो इतना क्लोज नेट, लगभग 3,500 मेरे पास सेलर्स और सिविलियंस थे और लगभग 500 अफसर थे, लेकिन उन्होंने मिलकर इतना बड़ा बेस बहुत अच्छे से चलाया। तो मीन्स ये सब मुझे इस ज्ञान में आने के बाद बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से फिर मैं फ्लैग ऑफ महाराष्ट्र बना, फिर डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस, फिर उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड, फिर कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज, डिसेड, वाइस चीफ। तो इन सब में धीरे धीरे मैंने यही सोचा कि सात्विक जीवन तो होना ही है, तो क्योंकि और ऐसा था कि जैसे जैसे सीनियर हम जा रहे हैं घर में सात्विक जीवन करना है, बहुत सारे गेस्ट भी आएंगे, बहुत लोग भी आएंगे, उनको भी एंटरटेन करना है, और सबको वेजिटेरियन नहीं पसंद होता है क्योंकि ये आर्म फोर्सेस में ड्रिंक्स ये सब तो लेना ही है। लेकिन मैंने धीरे धीरे सब कुछ, पहले तो करता ही नहीं था मैं, वैसे मेरे ये था कि मैं ड्रिंक्स तो कभी नहीं करता, लेकिन फिर भी किसी को ऑफर भी नहीं करना और नहीं करना। और हर एक जगह 2014 से के बाद घर में बाबा का कमरा बना दिया और उधर ये करते हैं। फिर जो भी स्टाफ मेरे साथ रहता था उनको भी कोर्स करवा देते थे हम, तो वो भी, और घर में ये पीस ऑफ माइंड चैनल और अवेकनिंग चैनल कंटिन्यूअसली चलता है रहता था, तो वो गीत चल रहे हैं तो वातावरण भी अच्छा हो जाता था, और उसके कारण ये भी। फिर धीरे धीरे जब मैं स्पेशली वाइस चीफ बन गया, जब बहुत लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है, तो मैंने ये कहा कि मैं हमारे घर में किसी को नॉनवेज तो मिलेगा ही नहीं और ड्रिंक्स भी नहीं मिलेंगी, लेकिन जो लोग हमारे यहाँ आते थे हमेशा खुश होके और इतने अच्छी तरह से जाते थे कि पार्टी में कि बहुत अच्छा लगता था उनको, क्योंकि मैं उनको शनिवार रविवार को सुबह सुबह बुला देता था फैमिलीज के साथ, तो वो आते थे, गेम्स खेलते थे, भगवान के गीत सुनते थे, उनको फिर वो खेल खुल के फैमिली के साथ उनका एक फैमिली आउटिंग हो जाती थी और अच्छा सात्विक भोजन करते थे, बहुत खुश होके जाते थे, कहते कि इस तरह से तो कभी कहाँ कहीं एंजॉय नहीं किया हमने। और फिर और आते थे, क्योंकि शाम की जो पार्टी होती है उसमें सब त्रस्त होके जाते हैं चाहे, तो इसलिए इसी तरह ना हर एक चीज में मुझे ये बहुत ही मेहनत नहीं करनी पड़ी और सारा इतना आसान हो गया कि भगवान ही ये कर रहा है। तो मैं एक उसमें से एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम मोतीलाल नेहरू मार्ग में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ उधर रह रहे थे, 30 मई 22 और 31 मई को हमारा वो ये भी था जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी, जिसमें मीन्स अगन बाबा की दुआओं से मुझे परम विशिष्ट सेवा मिल रहा था। तो हमारे मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर दोनों को मैं पुणे से लेके आया था, और सभी मेरे पिताजी अभी 93 हैं, मदर 90 हैं, ससुर अबाउट 88 हैं और 85 हैं, ऐसे उनको लेके आया था घर में। और 30 मई को बहुत बड़ा तूफान आया दिल्ली में और बहुत जोर से, तो ये दिन का समय था, दिन के समय आया था अबाउट 4 बजे के समय, और बहुत सारे पेड़ वगैरह गिर रहे थे और घर में हम सभी थे, और मेरे युगल संस्कृति उसको कुछ लगा कि बहुत सारा तूफान आ रहा है, तो घर से बाहर निकली, और जब ही बाहर निकली तो एक बहुत बड़ा बहुत सुंदर पेड़ था उधर, और उस सुंदर पेड़ के नीचे 7 आदमी काम करने आए थे उधर, और वो पेड़ के नीचे ही बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि उनको जस्ट दिमाग में आया कि इधर से हट जाओ क्योंकि बिजली चमक रही है और बिजली पेड़ पर ही आती है और आपको भी लग जाएगी, तो आप थोड़ा सा हट जाओ। तो जस्ट बोला और घर के पीछे गई, जैसे ही पीछे गई बहुत बड़ा बढ़िया आवाज आया, और उतने एक सेकंड में वो पूरा का पूरा पेड़ गिर गया, वो बड़ा सा पेड़ उधर ही, और इस तरह गिरा, लकीली वो 7 आदमी थे उसी एक सेकंड पहले उसके उधर से नीचे से अलग हो गए थे, और वो एक गाड़ी में आए थे और वो गाड़ी भी वो पेड़ के नीचे ही खड़ी थी, लेकिन वो ड्राइवर था उनको तो जुगल ने बताया नहीं था, लेकिन वो ड्राइवर ने देखा ये हट रहे हैं, तो उसने भी अपनी गाड़ी शुरू करके थोड़ी आगे कर ली, और वो पेड़ गिरा तो किसी को कुछ नहीं हुआ, सब बच गए। और वो पेड़ इतना बड़ा था, एकदम सेंटर ऑफ द ट्री था, पूरा ऐसे गिरा, और उसके साइड में बहुत सारी लाइट्स थी, बड़ा लॉन था, एक भी लाइट नहीं टूटी, और उसके एकदम एंट्रेंस पे हमने बाबा का कमरा बनाया हुआ था, तो वो पेड़ गिरा और बाबा के कमरे के साइड में गिरा, तो उधर भी कुछ नहीं हुआ, तो कुछ ये नहीं हुआ, मीन्स डैमेज नहीं, तो ये सब बस डिवाइन इंटरवेंशन है कमाल की, किसी को कुछ नहीं डैमेज, कुछ नहीं। फिर हमने बाद में वही पेड़ क्रेन से उठवा के फिर से लगवा दिया उधर ही जगह पे, तो वो भी उसका था। तो इस तरह के कमाल बहुत बहुत हुए हैं, तो समय कम है, नहीं तो बहुत सुना देते, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही सुंदर ये यात्रा रही भाई साहब की, कॉमोडोर से लेकर वाइस एडमिरल तक की। 2 साल पहले ही भाई साहब ने रिटायरमेंट प्राप्त किया है, तो आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं भाई साहब, परमात्मा शक्ति से आप सिर्फ आगे ही आगे बढ़ते रहे। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी हमारे भ्राता रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरवीर भाई साहब से। वर्तमान में आप एमडी यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो भाई साहब क्योंकि आज का टॉपिक ही है राजयोगा इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो आप भी जरूर ये हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपकी जहां जहां पोस्टिंग रही है, लास्ट आप रोहतक में आपकी पोस्टिंग रही, लेकिन उससे पहले आप कश्मीर में अपने टेन्योर के दौरान रहे, तो वहां पर बहुत सारे एनकाउंटर्स में परमात्मा शक्ति की मदद आपको मिली, तो कोई ऐसा इंसिडेंट, हमने सुना कि पुलवामा के दौरान भी आप वहीं पर तैनात थे, तो पुलवामा का जो आपका पूरा अनुभव है और उसमें परमात्मा शक्ति की क्या मदद आपको मिली, तो आप वो जरूर बताएं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब ने देविका मैम का और गोडमड़े का कितना शानदार अनुभव सुना, और ये हकीकत है कि जब आप परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, और यहाँ जो हमको ब्रह्मा कुमारीज में सिखा जाता है वो बिल्कुल सीधा रास्ता सिखा जाता है, इतना सीधा रास्ता कहीं पर भी, हम बहुत किस्मत वाले सब सोल्स हैं, आप सब जो हॉल में बैठे हैं या जो भी बाबा के ज्ञान के टच में आते हैं, कि जिसको इतना स्ट्रेट बाबा का ज्ञान मिलता है और उसको फॉलो करना भी बहुत ही आसान है, और जब आप फॉलो करते हैं तो आपकी, जैसे देविका मैडम ने कहा कि फिर आपके सारे बोझ हट जाते हैं, जैसे कोई और ही आपकी सारी जिम्मेवारियां उठा लेता है, वो परमपिता परमात्मा है और वो उन चीजों को करते चलते हैं, और सेम एक्सपीरियंस हमारे एडमिरल घोड़मरे सर का भी है, और वो आपको लौकिक के अंदर भी फिर आगे से आगे बढ़ाता जाता है, सफलता भी दिलाता है, आपके काम भी खुद करता है, आपको आगे ही बढ़ाता है। अभी बाबा की असीम कृपा से हमारे जो एडमिरल घोड़मरे सर है, आप सबको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने इनको श्रीलंका में एक एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया, जो कि बहुत बड़ी चीज है। तो ये बहुत मैं अपने अनुभव पे आते हुए कश्मीर में मेरे कई टेनर हुए हैं, और मैं लास्ट में था राष्ट्रीय राइफल सेक्टर कमांडर साउथ कश्मीर में देख रहा था, पुलवामा, सोफिया, बड़गांव, ये डिस्ट्रिक्ट मेरे पास थे। और पुलवामा के दो अनुभव हैं, मैं अगर 10 मिनट के अंदर दोनों को समाप्त करना चाहूंगा। पहला अनुभव है ये एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पुलवामा में, जैसे मोहम्मद ने 2018 फरवरी में एक फिदाई अटैक किया था, फिदाई अटैक, सुसाइड अटैक जिसमें बोलते हैं। और कोई है जिसने वहां पर सर्विस किया हो यहां पर पुलवामा में? ओके, वंडरफुल। तो ये 5 जैस के टेररिस्ट थे, और जहां पर पुलिस की और ये सीआरपीएफ की फैमिलीज रहती थी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, उनमें तकरीबन सुबह 4-4:30 बजे टेररिस्ट घुसाते हैं और जो फैमिलीज थी उनको होस्टेज बना लेते हैं। मेरा सेक्टर वहां से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पर था, तो जब हमको सूचना मिली तो हम भी पहुंच जाते हैं जो उनका हेडक्वार्टर था डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में। और मैं जब वहां पर 6:30 बजे पहुंचा तो ऑपरेशन की पूरी तैयारियां, सीआरपीएफ के एक आईजी थे, डीआईजी थे, पुलिस के भी सीनियर अधिकारी थे, और उस ऑपरेशन उन टेररिस्ट को खत्म करने के ऑपरेशन की तैयारियां चल रही थी। तो मैंने भी ऑफर किया कि भाई हमारे पास तो एक्सपर्ट ट्रूप्स होते हैं राष्ट्रीय राइफल्स, जो हर रोज इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, कि हम भी इस अगर चाहो तो इस ऑपरेशन को हम जो है अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उनको लगा कि क्योंकि उस जो बिल्डिंग्स का लोकेशन की लेआउट से उनकी ट्रूप्स को ज्यादा एक जानकारी है, और उनको पूरा का पूरा टेररिस्ट का लोकेशन भी पता है, और किस बिल्डिंग का कैसे आपस में कनेक्शन है वो भी उनको पता है, तो शायद वो जो वहां की ज्योग्राफिकल अवेयरनेस उनकी ज्यादा है तो वो शायद उसको अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। उनको जो भी चाहिए थे गैजेट्स हमारे पास होते हैं स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट करने के, तो जो भी गैजेट्स उनको चाहिए थे, इक्विपमेंट चाहिए थे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बाकी स्पेशल वेपन्स वगैरह, वो हमने उनको हैंड ओवर कर दिए। और उन्होंने ये ऑपरेशन तकरीबन 10 बजे के आसपास स्टार्ट किया, और ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पा रही थी उनकी। एक कैजुअल्टी हुई 10 बजे के आसपास, फिर 11 बजे तक 3 कैजुअल्टी होगी, तो कैजुअल्टीज फेटल, शहीद हो जाना। तो उनका तकरीबन ये मानिए आप 2:30 बजे तक 8 कैजुअल्टी हो जाती हैं, और सफलता अभी तक नजदीक नहीं है। तो ये पूरा क्योंकि हाई लेवल का फिदाई अटैक था, तो कोई दिल्ली के अंदर भी मॉनिटर चल रहा था, हमें हेडक्वार्टर में भी पूरी इसकी रिपोर्ट जारी थी हमारे चैनल के थ्रू, सीआरपीएफ और होम मिनिस्ट्री में भी रिपोर्ट जारी थी। तो फाइनली ये चर्चा चलने स्टार्ट हुई कि भाई इसको आर्मी को जो है हैंड ओवर कर देंगे। तब तक वहां श्रीनगर के आसपास एक स्पेशल फोर्सेज होती है आर्मी की, पैरा कमांडोज, आपने सुना होगा, तो जो स्पेशल फोर्सेज थी उसको भी स्टेज फॉरवर्ड कर दिया गया कि अगर आर्मी के पास ऑपरेशन आता है तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और स्पेशल फोर्सेज ही शायद इसको अंजाम अच्छे से दे पाएंगे। तो तकरीबन ये 3 बजे के आसपास ये डिसीजन हुआ कि ये आर्मी को ये ऑपरेशन टेक ओवर कर लेना चाहिए, और स्पेशल फोर्सेज का एक कमांडिंग ऑफिसर, उसकी पूरी टीम मेरे पास पिछले 2 घंटे से वो मेरे टच में थे, और जैसे हमारे पास था मैंने उस सीओ को बुला कि भाई चलो ठीक है प्लान डिस्कस करते हैं कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। तो उस कमांडिंग ऑफिसर ने 3-4 शर्तें मेरे सामने रख दी कि हमको ये इक्विपमेंट और चाहिए, ये इक्विपमेंट और चाहिए, ये भी चीज चाहिए। तो ऐसे डियर ये चीजें तो इतने शॉर्ट टाइम में तो अवेलेबल नहीं हो सकती हैं, मतलब और जैसे अच्छा अभी एक एक मिनट कीमती है कि जैसे हम लास्ट लाइट के पास पहुंच जाएंगे फिर अंधेरे में तो ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना ना के बराबर है, सुबह तक वेट नहीं कर सकते, सुबह तक तो फिर बहुत नुकसान हो जाता। तो उसने वो 3-4 कंडीशन रखी, तो वो कंडीशन उस टाइम फ्रेम में वो इक्विपमेंट वहां पर अवेलेबल नहीं हो सकते थे। तो मैंने हर हेडक्वार्टर में बताया कि ये पैरासेफ के नुमाइंदे सारे यहां पर आ चुके हैं लेकिन इनकी ये रिक्वायरमेंट्स है जो अभी इस टाइम फ्रेम में पूरा नहीं हो सकते। तो जो मेरे जनरल साहब थे उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, तो एक 10 सेकंड का पॉज दिया ये सुन के, सोचा फिर बोला कैन यू डू इट, अपने जो आपके राष्ट्रीय राइफल्स ट्रूप्स उनके साथ तुम कर सकते हो, सर हम कर लेंगे। और मैं काफी टाइम से ज्ञान में चल रहा था, तो ये एक जब आप मेडिटेशन आपको जैसे सिखाया गया होगा तो आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो तो तुरंत आप उस परम सत्ता से संपर्क दिन में किसी भी टाइम स्थापित कर सकते हैं। बल्कि यहां का मेडिटेशन सिर्फ सुबह शाम बैठने वाला नहीं है, आप जब इसमें रूटीन में आ जाएंगे तो चलते फिरते भी आप उस मेडिटेशन की स्टेट में रह सकते हैं। और जैसे आप उस स्टेट में आते हैं आपको फिर टचिंग्स वहां से डायरेक्शंस आपको गाइडलाइंस अपने आप आने स्टार्ट हो जाती हैं। आपके ऊपर डिसीजन का कोई बोझ नहीं रहता, सारा डिसीजन फिर वहां शिफ्ट हो जाता है और वहां से जो डिसीजन आएगा वो परफेक्ट आएगा। तो वहां से डिसीजन टचिंग मिलनी स्टार्ट होगी। मैंने अपने सीईओ को बुलाया और जो फर्स्ट हाउस था उसकी तरफ के इस घर से हम क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। आपको ऐसे ऑपरेशन में क्या होता है, पूरे घर को क्लियर, हाउस क्लियरिंग की एक ड्रिल होती है। आप अंदर घुसेंगे एक बुलेट प्रूफ सामने शील्ड लेकर और ऐसे क्लियर करना पड़ता है। तो उस घर में टेररिस्ट की मौजूदगी थी, कुछ फायरिंग के कारण थोड़ा डैमेज हो रखा था और जो हमारे जवान थे वैसे तो सब बहादुर हैं लेकिन क्योंकि उनके सामने इतनी कैजुअलिटी हो चुकी थी और अब उनको आगे जाना था और वो तो अभी तक बैठे हुए थे तो एक वो मनोबल सा बढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने देखा कि जैसे मैंने कहा वो टीम तैयार तो हो गई है लेकिन वो अच्छा ये ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं, वो पांच मिनट तक मतलब ऐसे तो किसी भी चीज का वो करके वो आगे जाने की चीज उसमें नहीं आ रहे। वो पहले आरएल फायर कर लेते हैं, पहले वैसे कर लेते हैं। तो मेरे को ये मैं उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, मेरे को एहसास होगा कि ये शायद मतलब ये भी लेफ्ट राइट इनका माइंड थिंकिंग अभी चल रही है। तो मैंने कंपनी कमांडर को कहा यार इसमें क्या इतना सोच विचार करते हो, ये घर है इसमें एंट्री करने चलो आओ। और मैं ऐसे बाबा ने टचिंग दिया मैं आगे चल पड़ा और ये टीम पीछे है। तो नॉर्मली एज ए कमांडर तो आप आगे भी नहीं खड़े होते हो, मतलब आप तो एक पीछे रूम या उसमें होते हो, यहां पर आप सामने भी थे, उन सामने भी सबके सामने मैं तकरीबन चार मीटर चला हूं उस घर की तरफ और ये पार्टी पीछे है। तो जैसे इस पार्टी ने देखा कमांडर चल पड़ा अकेला तो इनके अंदर वो फिर ऐसा हौसला आया कि पूरी टीम के अंदर बहुत हौसला आया और वो भागे तेजी से मेरी तरफ और बोले सर आप जाओ हम इसको करते हैं। और वो उस एक जेस्चर ने उस टीम में इतनी पावर भरी कि वो ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट बिल्डिंग क्लियर की, एक टेररिस्ट उसमें हमने न्यूट्रलाइज किया। और टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो हमने 3 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तकरीबन 9:30 तक हमने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारी कैजुअलिटी 0, 5 टेररिस्ट धराशायी। ये आप सब सहमत हो गई, इस टाइप की चीज इंसान के बस में नहीं है, इंसान ऐसी चीजें नहीं कर सकता। जब इतना एक खतरनाक टाइप सिचुएशन था, टेररिस्ट रूम में है, हमारा एक भी कैजुअलिटी ना होना, तो ये उस परमपिता परमात्मा जब उसको हम हैंडओवर कर देते हैं देन ही टेक्स चार्ज। और ये थ्योरी नहीं है, मतलब ये मैं क्योंकि आप जो फर्स्ट टाइम आए होंगे आपको लग रहा होगा ये सर सामने बैठ के कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब ये तो कुछ प्रैक्टिकल सी नहीं लग रहा, ये आपको ऐसे लग रहा होगा लेकिन ये रियलिटी है। जैसे गोडबड़े सर ने बताया हमारे पास तो एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि हम पूरा दिन आपको सुना सकते हैं और जब आप सबको सुनोगे तो आपको ये लगेगा हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है, वाक्य में ये पावर वहां से आती है। और जब परमपिता परमात्मा जब आपके काम को संभालता है उसमें सफलता मिलती है, अव्वल दर्जे की मिलती है। वहां पर तकरीबन हमने 100 के ऊपर टेररिस्ट को ऊपर भेजा हुआ उस टेन्योर में और हर एक ऑपरेशन में वो इतना सर्जिकल होता था कि हमारी कैजुअलिटी किसी ऑपरेशन में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सारे ऑपरेशन बिल्कुल सर्जिकल होते थे। ये सीआरपीएफ के ऊपर एक फिदाई अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, शायद हम सब ने सुना होगा। तो मैं 12 सेक्टर में कमांडर था और ये मेरा नेबरिंग सेक्टर था 1 सेक्टर, ये उसके इलाके में मेन रोड पे ये सीआरपीएफ पे अटैक हुआ था। तो इसमें ये अटैक तो बहुत बड़ा अटैक था और एक पूरे देश के ऊपर एक प्रकार से हमला था, ना हमारे बहुत जवानों के ऊपर, देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर हमला था। तो पूरी इंट एजेंसी थी वो हरकत में आ गई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिफेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वहां से सबका यह था कि जल्दी से जल्दी जो जो टेररिस्ट इसको प्लानिंग में इन्वॉल्व थे उनको खात्मा करना है। और ये 17 तारीख तकरीबन 3 दिन के बाद शाम को खबर मिलती है हमको कि हमारे इलाके में पुलवामा के पास एक पिंगलाना करके छोटा सा गांव है, ये 5 टेररिस्ट उस गांव में शायद है, इनकी खबर मिलती है। तो मैं उस टाइम छुट्टी पर आया हुआ था, 3 दिन की मैं छुट्टी पर था और रात को ही ऑपरेशन लॉन्च हो जाता है 17 तारीख की रात। और 18 को जब मैं सुबह घर पे उठा तो काफी मैसेज मिस कॉल मिले, तो देखा तो पता चला कि ऐसे वो टेररिस्ट पिंगलाना गांव में है, हमने रात को ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और उसमें हमारा एक मेजर ढोंडियाल और 3 जवान शहीद हो गए हैं और अभी तक टेररिस्ट की कोई कैजुअलिटी, टेररिस्ट का कोई हम नहीं खत्म कर पाए हैं। तो ये 9:30 बजे जब मेरे को ये पता चला तो एक मेरे को बड़ा झटका इस प्रकार से लगा कि हम तो बड़े क्लीन ऑपरेशन अभी तक हमारे चल रहे थे, ये अचानक ये कैसे हो गया ये। तो मैं दिल्ली में ही था तो नेक्स्ट फ्लाइट मैंने श्रीनगर की ली और तकरीबन 12 बजे फ्लाइट पकड़ के 1 बजे मैं श्रीनगर पहुंच जाता हूं। तो जब पहुंचा तब तक वो ऑपरेशन चल रहा था, तो मैं जहां ऑपरेशन था स्टेट वहीं पर पहुंचता हूं ऑपरेशन की साइट पर, और मुझे बताया कि 4 टेररिस्ट को हम न्यूट्रलाइज कर चुके हैं और एक जो मेन गाजी बाबा जो उनको टॉप पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसकी सर्च अभी चल रही थी। तो जब ये कार्रवाई चल रही थी तब मैं सोचा कि रात को जो हमारे शहीद हुए हैं, हर एक ऑपरेशन में हम उसको रिव्यू करते हैं एक प्रकार से ताकि एक लेसन अगले ऑपरेशन के लिए लें। तो मैं वो जगह देखना चाहता था जहां हमारी कैजुअल्टी हुई और कैसे हमने मूवमेंट किया था, कैसे कहां पर टेररिस्ट थे और क्या वो सिचुएशन बनी कि ये हमको लॉस हुआ। तो वहां वो सिचुएशन पूरा समझ के मैं कि इस यहां से फहरा मेरे डोंडियाल यहां खड़े थे वो सिचुएशन मैंने समझी, और वो समझ के फिर पतली सी गली आती है, वो पतली गली आके चौड़ी एक गली में मिलती है आके, और जो जिस आतंकवादी को हम ढूंढ रहे थे वो वहां से तकरीबन 50 मीटर दूर किसी घर में ढूंढ रहे थे। पतली गली से मैं था, मेरे साथ मेरी क्लोज प्रोटेक्शन वो थी, और जैसे हम मेन गली में आते हैं तो 8 मीटर दूर एक ट्रैक्टर की ट्रॉली है, उसके नीचे ये टेररिस्ट 5वां बैठा हुआ है, और एक उस चौड़ी गली में पीछे की तरफ जब ऑपरेशन चलता है तो 2 कॉर्डन लगाते हैं, कॉर्डन ने घेरा डालते हैं, एक क्लोज कॉर्डन होता है जहां ऑपरेशन होता है बिल्कुल उसके साथ साथ, उस 2-3 घरों के साथ साथ, एक आउटर कॉर्डन होता है वो तकरीबन वहां से 100 मीटर के बाहर की तरफ होता है। तो आउटर कॉर्डन में नॉर्मली CRPF और ये पुलिस होती है वो, जो ताकि लोग अंदर आके ऑपरेशन में इंटरफेरेंस ना करें। तो टेररिस्ट ने जैसे देखा 8 मीटर, उसने हमारे पर एक एक फायर खोल दिया। मेरे पास तो कोई ऐसे बुलेट प्रूफ वगैरह कुछ नहीं था, मेरी पार्टी तो फिर भी बुलेट प्रूफ रिग में थी, और ये मानिए एक प्रकार से इतना नजदीक फायर देखे थे बहुत, हर एक इनकाउंटर में जाता था मैं, लेकिन सामने से फायर कर आपकी तरफ ये मंजर कभी नहीं देखा था। एक प्रकार से आप फ्रीज हो जाओ, तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका ये क्या होगा ये, और AK-47 का रेट ऑफ फायर बड़ा तेज होता है तो उसकी 1 मिनट के अंदर उसका पूरा मैगजीन 32 राउंड उसने खाली कर दिया, तुरंत हमने उसको उसके बाद न्यूट्रलाइज कर दिया। और इस फायर में देखा जो पीछे था मेरा पार्टी में DIG था, उसके पेट में गोली लगी और पेट के आर पार निकल गई, DIG अमित थे उनका, एक पुलिस का इंस्पेक्टर था उसके यहां गोली लगी वो शहीद हो जाता है, एक मेरा और मेजर था जो पीछे की तरफ गया हुआ था उसके भी दोनों थाइज में बस लगे, दोनों थाइज कट जाती हैं वो भी गिर गया। मेरी पार्टी जो सबसे नजदीक थी मेरे एक प्रोटेक्शन के ऐसे थाइज के यहां से गोली पार निकल जाती है। तो जब भी इस टाइप का ऑपरेशन चल रहा होता है तो एक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई रहता है और डॉक्टर की टीम भी स्टैंड बाई रहती है। तो तुरंत फिर मैंने आगे सूचना दी कि भाई ऑपरेशन अभी हमारा कंक्लूड हो गया, लास्ट टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो वहां से हेलीकॉप्टर आया, फिर DIG को और जो इंजर्ड थे उनको उसमें डाला। तो इस कार्रवाई में तकरीबन 20-25 मिनट के आसपास लग गए होंगे, और ये जब कार्रवाई पूरी हो रखी थी तब मेरे को लगा मेरी भी ऐसे टांग में कुछ ऐसे चीटियां सी कुछ चल रही हैं। तो देखा तो मेरे भी टांग में गोली आर पार निकली हुई थी और दोनों तरफ से ऐसे पाइप जैसे खून निकला हुआ था। तो वो एक प्रकार से प्रॉब्लम हाइटन इतनी, आप इतने क्या उसको शब्द हैं, आपका बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल आप उस जोन में चले जाते हैं कि आपको पेन की भी फीलिंग नहीं होती, वो पेन की फीलिंग का एहसास भी 20-25 मिनट के बाद होता, नहीं तो उसके पहले एक जरा से भी एहसास नहीं था। और कैसे बाबा प्रोटेक्शन करता है कि जितने मैं तो बिल्कुल सिविल ड्रेस में था और जिस जिसको गोली लगी सबसे कम इंजरी वो मेरी थी वो, तो जैसे बाबा कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है, सफलता दिलाता है। तो ये एक फैक्ट है, आप में से जो जो भी यहां जाने के बाद अगर आप सेंटर के टच में आते हैं, इस को ज्ञान को मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, ये आप 1000% मान के चलिए आपकी जिंदगी चमकना स्टार्ट हो जाएगी, आपके परिवार की जिंदगी चमकना स्टार्ट हो जाएगी और आपको हर फील्ड में सफलता मिलेगी क्योंकि काम आपके वो करना स्टार्ट कर देगी। थैंक यू ओम शांति।
बहुत ही सुंदर अनुभव भाई साहब का। अभी अगला अनुभव सुनने के लिए मैं जरूर देविका जी से जरूर एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपने, हमें मालूम पड़ा कि ज्ञान बहुत सुंदर तरीके से समझा और ये भी जरूर आपने क्लियर इंडिकेशन परमात्मा शक्ति द्वारा मिला कि ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहां से आप संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ये ज्ञान प्राप्त किया 6 साल पहले, तो आपके करियर का कोई सुंदर अनुभव जहां पर आपने इस शक्ति को, इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया हो और आप उस परिस्थिति से बाहर आए हो, तो आपके करियर का कोई सुंदर अनुभव?
ओम शांति। क्योंकि मैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूं, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, और हम तो बैकग्राउंड में रहते हैं, हम कहते हैं कि हम पेपर टाइगर्स हैं। तो आप सबके जितने प्रपोजल्स हैं, जब आप इतनी मेहनत से बना करके लाते हैं, वो हमारी टेबल पे आते हैं और वो हम उसका जो मुआयना करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद में उस पर हम अपने विचार देते हैं। तो जो फाइनेंस के जो विचार दिए जाते हैं ना, वो किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। मेरे साथ में बैठे हैं हमारे एडमिरल गुरमाडे जी, और हम दोनों ने साथ में मिनिस्ट्री में काम किया है। जॉइंट सेक्रेटरी नेवी के फ्लोर पे मैं थी पोस्टेड, और मेरे ही 2 कमरे के बाद में इनका कमरा था, और ये थे डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। तो जब फाइल्स हमारे पास में आती थी, और उस दूसरी तरफ जब मैं फाइनेंस साइड में थी, तो मैं एडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर नेवी थी, तो जब वो फाइल्स इनकी वहां पे भी पहुंचती थी, तो भी हम उसके जो पोस्टमार्टम करके हम उसका जो मुआयना करते थे, तो नेवी वाले भी हमसे कुछ ज्यादा खुश भी नहीं रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज की सैलरी मिलती है, वो काम तो आपको करना ही होगा, वो तो धर्म है ना, वो तो आपका कर्म है, धर्म है, आपको निभाना होगा। और बाद में अप्रिशिएट भी करते थे कि नहीं, आपने जो कहा वो सही है, पर हाँ, क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी ये काम करना था, थोड़ी मेहनत, आप हमसे मेहनत बहुत करवाती हैं, इनका एक शिकायत बहुत रहती थी। और हम कहते थे अभी मेहनत कर लोगे तो बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो सीबीआई वगैरह बहुत मेहनत करवाएंगे आपसे, हमसे ज्यादा करवाएंगे। तो नहीं, पर बहुत मेहनती होते हैं सर्विस ऑफिसर्स, इमीजिएटली वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो एज सच जो जैसे अनुभव रहे परमात्मा शक्ति के उनको, वैसे हमारा अनुभव ये रहा है कि हम जब बैठते हैं मीटिंग्स वगैरह में, तो एडमिरल गुरमाडे जी भी इस बात के साक्षी हैं कि जैसे मिनिस्ट्री में मीटिंग होती है, तो जो रूम है वो फुल ऑफ समटाइम्स तीनों ही चीफ होते हैं, सीडीएस भी होते हैं, कई बार सिस्क भी होते हैं, और बाकी एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड मार्शल्स सब बैठते हैं, और हम एक फाइनेंशियल साइड वाला सिर्फ एक बंदा बैठा होता है, और सारी फायरिंग वैसी वाली नहीं, डिशुम डिशुम वाली फायरिंग नहीं, पर दूसरी वाली फायरिंग हमारे पास में बहुत आती है, और हमको एक ही हमको अपने आप को वहां पे सबसे डिफेंड करना पड़ता है कि हमने जो फाइल पे लिखा है वो हम कैसे उसको डिफेंड करते हैं। और ये हमारा जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि फाइनेंस का काम ही है कि आप उसकी स्क्रूटनी करें प्रपोजल की, और उसमें से कमियां निकाल के बताएं, ताकि वो पेपर के टाइप पे वो एकदम परफेक्ट केस बन जाए, और सारा प्रोसीजर उसका जैसे ठीक से फॉलो किया जाए, वही हमको सैलरी उसी चीज की मिलती है। तो पर वो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव होता है वो ये सोचता है कि जल्दी काम हो जाए, थोड़ा पेपर वर्क हमने किया है, पर हम कहते नहीं, थोड़ा सा और कर लीजिए। तो उस समय में जो जितना आपको एक निर्भयता की आपको जरूरत होती है कि आप इतने सारे लोगों के साथ में बैठे हैं और अपनी बात को रख पा रहे हैं, आपको वो इतने सारे डेकोरेशंस वाले ऑफिसर्स आपके चारों तरफ हैं, आप उससे एकमात्र आप बैठ करके डिफेंड कर रहे हो। कई मीटिंग्स में तो मंत्री जी भी साथ में बैठते थे, तो उनके सामने आपकी जैसे लिटरली लाइक पेशी होती है। तो परमात्मा शक्ति इतनी थी हमेशा साथ में, उसको महसूस किया कि वो एक निर्भयता रहती है, अपनी बात को सच्चाई से और एक बहुत ईमानदारी से और उसके साथ में निर्भयता से बोलने की शक्ति परमात्मा दे देता था। उस समय में डर नहीं लगता था कि जो कह रहे हैं तो उसका क्या होगा। फिर जो आप थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की फाइल आप हैंडल करते हैं, उस फाइल्स को हैंडल करते हुए ऐसे 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 डर नहीं लगता है आपको, जैसे कोई शक्ति है जो प्रोटेक्ट कर रही, क्योंकि आपकी सर के अंदर इतनी सत्यता आ जाती है, परमात्मा शक्ति का आपको इतना एहसास होता है हर दिन कि आप अकेले नहीं हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और तो हर दिन हर पहल पल ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ वो है, और आपको वो सही, जैसे बताया ना कि अंदर से टचिंग होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता होगा, ये लोग शायद ये जो बोल रहे हैं ये इनका अपना शायद कुछ ऐसा होगा, पर ये अनुभव की चीजें हैं, ये अनुभूति की चीजें हैं कि आपको कैसे वो डायरेक्ट एक सेकंड के लिए आपको टचिंग होती है और आप डायरेक्ट अपना अपना बदल देते हैं। तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पे नहीं बताऊंगी, पर ओवरऑल जो हमारे जीवन में हम जो कार्य करते हैं वो उसमें कैसे परमात्म शक्ति आपको महसूसता दिला देती है। और एक चीज और है, सर्विसेज के बारे में मैं हमेशा ये कहती हूं कि आप यूनिफॉर्म के लोगों के साथ डील करते हैं, वो एक डिसिप्लिन में है, आपका आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, लेकिन हम जो काम करते हैं हमारे पास में कोई एक्ट नहीं है। स्टाफ की बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस है हमारे डिपार्टमेंट में, 50% स्टाफ की शॉर्टेजेस हैं, एक ही आदमी को तीन तीन चार चार लोगों का काम करना पड़ता है। हम कहते हैं हमने डिजिटाइज्ड कर दिया है वर्क को, लेकिन डिजिटाइज्ड होने के बाद में काम डबल हो गया है, काम के प्रोसीजर्स चेंज नहीं हुए हैं, तो लोगों को बहुत प्रेशर है काम करने के लिए। अब सबको एक इंस्टेंट कॉफी की तरह हर चीज इंस्टेंटली चाहिए। एग्जीक्यूटिव साइड पे बहुत एक्सपेंशन होता जा रहा है, लेकिन जो बाकी सपोर्ट सर्विसेज हैं उनके पास में इतना सपोर्ट सिस्टम उनका कम होता जा रहा है, उनकी मैन पावर को भी कम किया जा रहा है। तो उस सब चैलेंजेस में अपने लोगों से इतना काम करवाना, उसके लिए अनलेस आपके पास में वो एक मॉरल जिसे कहते हैं शक्ति नहीं हो, परमात्म शक्ति नहीं हो, और वो आप इफ यू आर नॉट लीडिंग इट बाय एग्जांपल, और तो वो बहुत उस समय में बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे। तो वो करवा पाना और उसमें भी ऐसे काम करवा पाना कि सामने वाले आपके स्टाफ को भी ऐसी महसूसता नहीं हो कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो ऐसे एटमॉस्फेयर को एकदम बैलेंस में बना करके रखना, एक ऐसी जिसमें कि वो हंसते खिलखिलाते ऑफिस में आए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए ऑफिस से वापस जाएं। तो वो जो एटमॉस्फेयर की इक्विनिमिटी जो है ऑफिस में बनाए रखना, वो बैलेंस बनाए रखना, वो खुशी का वातावरण बनाए रखना, वो सब ये राजयोग मेडिटेशन आपको सिखा देता है। तो वो जो आपके अंदर से जो शांति के वाइब्रेशंस निकलते हैं, आप जब बहुत ज्यादा बैलेंस में हर चीज में रहते हैं तो आपका स्टाफ भी बहुत बैलेंस में रहता है। एक सिचुएशन आप इमेजिन करिए कि कोई आता है, मिनिस्ट्रीज ने कोई रिपोर्ट मांगी है और 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है आपको, 40 ऑफिसर्स से वो रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन उसको टेबुलेट करना है, मिनिस्ट्री को 3 घंटे में देना है, एकदम सब पैनिक हो जाएगा, सब हिल जाएंगे, इधर फोन कर उधर फोन कर। पर यदि जब आपके पास में कोई स्टाफ मेंबर आता है, आप CGDO हो या आप एडिशनल CGDO हो, और आप एकदम काम हो, आप कहते हो नहीं हो जाएगा, ना चिंता नहीं करो हो जाएगा, वो इतना शांति से जाता है और वही काम होता भी है, लेकिन वो बहुत शांति से होता है। तो वो जो एक आपके व्यवहार की वजह से एक तो हलचल हो जाती है सारे डिपार्टमेंट में, और कम से कम 100-200 लोगों को आप हलचल में ले आते हो, लेकिन यदि आप खुद प्रैक्टिस करते हो राजयोग मेडिटेशन, विच आपको जो शांति दे देता है, आपको एक स्थिरता दे देता है, तो वो आप ट्रेवल करता है, वो वाइब्रेशंस आपकी ट्रेवल करती हैं, और आपके जहां भी आप काम करते हो वहां का वातावरण भी एकदम स्टेबल, लोगों में स्टेबिलिटी, लोगों के अंदर एक बैलेंस लेकर के आता है, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। आज के टाइम पे हर इंसान बहुत परेशान है, सब बिजी हैं, छोटे बच्चे वाले भी बिजी हैं, बच्चे जिनके स्कूल में जा रहे हैं वो भी बहुत बिजी हैं, बहुत टेंशन हैं, बहुत तनाव, उसमें यदि आप उसके टेंशन को और ऐड कर देते हो तो ये बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाती है। तो आपको जो मिलता है इस मेडिटेशन से वो मिलती है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, पीस, शांति, और एक हमेशा जैसे छत्र छाया के अंदर हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, मतलब आपको लगता ही नहीं कि कुछ हो जाएगा। जब ऐसी आपके अंदर एक छत्र छाया में रहते हैं ना, तो जीवन परिवर्तन हो जाता है आपका भी और बाकी के लोगों का भी। ये पर्सनल अनुभव से मैं बता रही हूं आपको।
थैंक यू देविका जी, विशेष आपने बताया कि आपके कैरियर के दौरान विशेष आपको निर्भयता की शक्ति जो इस मेडिटेशन से आपको प्राप्त हुई, बहुत ही सुंदर अनुभव आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भ्राता गौरमडे जी से, वाइस एडमिरल गौरमडे जी, आप हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं क्योंकि आपको नेक्स्ट सेशन कराना है ग्रुप ए के लिए। थैंक यू सो मच देविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विकास भाई जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, रिटायर्ड कर्नल विकास चौहान भाई जी, आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत इस मंच पर करेंगे। सबसे पहले जब आप ज्ञान सरोवर में एंट्री करते हैं तो बहुत सुंदर स्माइल के साथ रिसेप्शन में जो आपको वेलकम करते हैं हमारे भ्राता विकास भाई जी, तो हम इनसे भी सुनेंगे। लेकिन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदरणीय गौरमडे भाई जी से। भाई साहब, हमने सुना कि एक तरफ तो युद्ध चल रहा था यूक्रेन में और दूसरी तरफ आप रशिया में एक शिप की लॉन्चिंग के लिए गए हुए थे, तो उस दौरान आपको कहा गया कि अभी थोड़ा हम पोस्टपोन कर सकते हैं क्योंकि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो यहां हम रशिया में यहां पर इस शिप का लॉन्चिंग अभी नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आपका क्या डिसीजन रहा और कौन सी परमात्मा शक्ति ने आपको वो शक्ति प्रदान की कि आपने उस शिप का बहुत सुंदर तरीके से लॉन्चिंग भी किया और परमात्मा के इस ज्ञान ने आपको वो एक टफ डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट किया, तो वो अनुभव हम आपसे जरूर शेयर करना चाहें, आप जरूर हमसे शेयर करें भाई साहब।
ओम शांति। तो ये फरवरी 2022 का समय था, अबाउट 23 फरवरी 2022 को हम रशिया गए थे, मैं और युगल, और एक नौसेना की एक शिप लॉन्च करनी थी। और नौसेना में शिप्स जब कंस्ट्रक्ट होती हैं उसके बाद उनको लॉन्च किया जाता है और उनका नामकरण भी किया जाता है, और वो ट्रेडिशन है कि लॉन्चिंग एंड नेमिंग इज डन बाय अ लेडी, हमेशा तो एक महिला ही करती है। तो उसके लिए ऑफकोर्स मुझे तो चीफ गेस्ट था, लेकिन मैं युगल उनको वो शिप लॉन्च करनी थी, और वो डेट थी 24 फरवरी 2022 का, वो डिसाइड था। तो हम उधर पहुंच गए थे 23 फरवरी को, और सुबह 24 फरवरी 2022 को सुबह उठे तो तभी पता चला 8 बजे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था और युद्ध शुरू हो गया था, और हमारी सेरेमनी थी 12 बजे उस दिन, और फिर तो युद्ध तो शुरू हो गया था और हम रशिया में ही थे, तो उसमें उनको अपनी कार्रवाई के लिए जा रहे थे, और वो शिप एक कैलिनिनग्राड के शिपयार्ड में बन रहा था, और उधर पूरी शिपयार्ड के लोग, रशिया के लोग सब आए हुए थे, और लॉन्चिंग से बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, और ये बड़ा जहाज है, नया वाला स्टेल्थ फ्रिगेट बन रहा है भारतीय नौसेना के लिए। तो हम वो कार्रवाई करके पहुंचे उधर, तो 11 बजे पहुंच गए थे, सब तैयारी हो चुकी थी, प्रेस सब थे, वो सब था, और लगभग 11:30 बजे मुझे फोन आया एम्बेसडर से कि युद्ध शुरू हो गया है और वो बढ़ रहा है, आप इस सेरेमनी को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये दिखाई देगा पूरे विश्व में कि भारत अपना शिप लॉन्च कर रहा है, रशिया ने अटैक किया है, और सभी तरह से प्रतिक्रिया ऑलरेडी आ रही थी कि रशिया गलत है, यूक्रेन की तरफ से ये है वो सब। तो उसमें तो जैसे ब्रिगेडियर हरबीर ने कहा है ना कि एक बार ज्ञान में हो तो सीधा अपना कनेक्शन परम पिता परमात्मा से होता है। तो उस समय मुझे ये था कि अभी पूरी पूरा डॉकयार्ड उनका सब खड़े थे उधर, पूरे लोग खड़े थे, हमारा शिप लॉन्च करना था, और मैं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ था, और मैंने बहुत अपॉइंटमेंट्स किए हुए हैं नेवल हेडक्वार्टर्स में। नेवल हेडक्वार्टर्स में लगभग मैंने 17 साल काम किया है, हर एक रैंक पे, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, तो हर एक रैंक में किया। तो उधर जो भी काम करते हैं, जिन्होंने किया है उनको पता है कि उधर काम करना एक्चुअली ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जैसे देविका मैम ने बताया, फाइनेंस से डील करना है, सबसे डील करना है, सब तरह के करके अपने केसेस करने पड़ते हैं। तो ये एक और था कि अगर शिप लॉन्च नहीं हुआ तो एक माइलस्टोन खत्म नहीं होगा, माइलस्टोन नहीं होगा तो उसका पेमेंट नहीं होगा, उसका पेमेंट नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, और शिप बनेगा नहीं तो वो हमारी भारतीय नौसेना में आएगा नहीं, और ये हमारी क्षमता का ये था। तो एक डिसीजन था कि लॉन्च, और ऑर्डर आया था मुझे कि कैंसिल कर दो उसको, तो मैंने कहा कि नहीं कैसे करेंगे, फिर कहता नहीं ये तो ऑर्डर आया है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आया। तो मैंने फिर मैं बाबा से कनेक्शन किया और सोचा कि क्या करना चाहिए इस समय, तो मुझे टचिंग आई कि नहीं ये करना चाहिए हमने। तो मैंने फिर उन रशियंस को बुलाया, तो बाबा ऐसे समय पर टचिंग भी देता है और युक्ति भी सुझा देता है। तो उनको बुलाया, मैंने कहा कि हमें तो मुझे तो ऑर्डर आया हुआ है कि कैंसिल करना है और मैं कैंसिल नहीं करना चाहता, और आप भी यही चाहते होंगे क्योंकि उनको तो पेमेंट मिलनी है और हमें शिप मिलना है और हमें क्षमता चाहिए। तो मैंने फिर उनको कहा कि आप हम करेंगे, लेकिन आप इसकी जो जानकारी है ये प्रेस में बिल्कुल नहीं आएगी, और सब प्रेस वालों को बुला के भी बोला कि आप इसको कहीं पर भी प्रेस में नहीं डालोगे। और 12 बजे हुआ, मैंने हमने वो पूरी सेरेमनी, क्योंकि सेरेमनी बहुत अच्छी होती है, उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं और फिर जो महिला लॉन्च करती है, जैसे मेरी युगल थी उन्होंने किया, तो वो एक मंत्र पढ़ती हैं, जाप करते हैं, फिर नारियल जहाज पे तोड़ा जाता है, वो भी वो महिला ही तोड़ती है, फिर उसका नामकरण भी एक एक करके किया जाता है, वो पूरी सेरेमनी करके हमने वो शिप लॉन्च कर दी और हो गया और काम भी हो गया। उसके बाद अभी भी आप अभी देखो उस निर्णय का सही ये, क्योंकि अभी तक युद्ध चल रहा है। अगर हम उस समय कैंसिल कर देते उसके बाद यही निर्णय कोई नहीं ले पाता, क्योंकि वही होता कि ऊपर से ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, जहाज अभी तैयार होके हमें भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है अभी। तो इस तरह से बाबा की टचिंग सही समय पे सही निर्णय लेने के लिए, और बाद में फिर हाइंडसाइट में सब कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि अगर अगर वो बहुत न्यूज में आ जाता, विश्व में फैल जाता, तो शायद हमारा जॉब भी चले जाता उसमें कि ये आपने गलत निर्णय ले लिया। लेकिन हमने सोचा भगवान हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा, और बाद में फिर सबने बताया कि अच्छा किया आपने ये निर्णय ले लिया, क्योंकि जबकि ऑर्डर कुछ और आया था, लेकिन मैंने वो करके सब भगवान ये बाबा की का कमाल है।
बहुत ही सुंदर, और ऐसे समय पर इतना सक्षम निर्णय लेना, ये जरूर परमात्मा टचिंग ही हो सकती है। तो मैं आज इस सत्र से लास्ट प्रश्न पूछना चाहूंगी हमारे आदरणीय भ्राता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान जी से। ब्रदर, सुना है कि आर्मी में जो फौजी हैं वो जल्दी से किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर बात में कोई ना कोई क्वेश्चन विशेष आर्मी पर्सनल ऑफिसर्स का बना ही रहता है। तो जब पहली बार हमारी बहनें आपकी यूनिट में आई और हमने सुना कि वो रक्षाबंधन बांधने आई थी आर्मी ऑफिसर्स को, तो कैसे आपको ये लगा कि ये जो बहनें यहाँ पर आई हैं तो मुझे इस संस्था से जुड़ना है और विशेष इस यूनिट से उठकर सेंटर पर जाकर कोर्स करना है? तो उसका शॉर्ट में हम अनुभव सुनना चाहेंगे, उसके बाद आप सबके लिए टी रेडी है लॉन में, तो आप वहां आप सभी प्रोसीड करेंगे, परंतु उससे पहले बहुत ही सुंदर भाई साहब का अनुभव।
ओम शांति। जैसा कि आपने अनुभव सुने, मैं क्योंकि टाइम हमारा लिमिटेड है, आपको बताना चाहूंगा 99 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो मुझे मौका नहीं मिला कारगिल वॉर में जाने का, बिकॉज मेरी यूनिट मोबिलाइज होके वॉर के लिए चली गई और मुझे तब तक आदेश मिल चुके थे आर्मी हेडक्वार्टर्स के कि आपका यहां इस यूनिट में कार्यकाल समाप्त हो चुका है और आपको अपनी नई यूनिट में जाना है जो कि मुंबई में थी, सीओडी मुंबई। मैं ऑर्डिनेंस कोर से बिलोंग करता हूं, जो कि जिसका काम है सारे देश के जितना भी आपको सामान दिखता है फौज के पास, राशन और फ्यूल के अलावा, वो सारा हमारे पास रहता है ऑर्डिनेंस के पास, चाहे वो गोला बारूद हो, चाहे हथियार, साजो सामान, गाड़ियां, हर चीज जो एक फौजी ने पहना हुआ है, उसके अस्त्र शस्त्र, उसके वस्त्र, सब कुछ हमारे पास रहते हैं। तो लड़ाई का समय था, हम लोग काफी बिजी थे और मैं कंपनी कमांडर की वहां उस समय ड्यूटी कर रहा था, और ऐसे समय पे जब पूरे देश में लड़ाई का माहौल है, हम लोग भी काफी बिजी रहते थे अपने काम में, और मेरे यूनिट में उस समय सारे भारत की सेनाओं के गाड़ियों के सामान के लिए पार्टीज आई हुई थी कलेक्ट करने, क्योंकि उस समय हमारे देश की जो गाड़ियों की हालत बहुत खराब थी, पुरानी गाड़ियां थी, पुराना साजो सामान था, तो उसकी मेंटेनेंस भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और देश के हालात ऐसे थे, तो लोग भी आप समझ सकते हैं किस तरह का उनके अंदर का मनस्थिति होगी, सारे अचानक से उनको बोला 4 लोगों की पार्टी को, भाई तुम चलो मुंबई में जाओ, ये सामान लेके आना है, टायर्स लाने हैं, ट्यूब्स लानी है, बैटरीज लानी है गाड़ियों की, और ऐसे ऐसे करके पार्टीज को भेज दिया। हमारे पास भी लिमिटेड उनके लिए वो मतलब बंदोबस्त था, तो थोड़ा हालात थे उतने ठीक नहीं थे। तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम बहुत रहती थी। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड ऑफिसर था, क्योंकि एक फौजी परिवार से हूं, तो मैं काफी क्रोध करता था और बचपन से वही माहौल देखा था, तो उस तरह से फिर मेरी भाषा भी वैसे ही थी। फौज में आप जानते हैं जिस तरह से फूल झड़ते मुख से, तो वैसे ही मेरा स्वभाव था। तो ऐसे माहौल में जब टाइगर हिल पे, अगस्त का महीना था, टाइगर हिल पे बहुत भीषण संघर्ष चल रहा था, और मेरे ऑफिस में दो बहनें आई हमारी आदरणीय दीदी जैसे, और बहुत प्यार से आके बोलती है ओम शांति। मैंने देखा उनकी तरफ, मैंने कहा हाँ जी ओम शांति, क्यों आए हो आप यहां? तो बहनें तो बड़े प्यार से बोलती हैं मुस्कुरा के कि हम आपसे ना परमिशन मांगने आए हैं, हम अपने फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं। और मैं मन में सोचने लगा ये देखो टाइम बर्बाद करने आ गई है। हाँ, और मुझे ऊपर से, आपको मालूम है ना ऊपर से अधिकारियों से क्या सुनने को मिलता है, तो मैंने बोला ये अब पक्का गाली पड़वाएंगे मेरे को ऊपर से। मैंने बोला क्यों राखी बांधनी भाई आपको, भाई मुंबई है, करोड़ों जनसंख्या है, वहां पे हम ही मिले, तो मेरे को लगा ये क्यों आए भाई। तो
विकास बहन... भाई ने वही राखी अभी तक बांधी हुई है देखिए।
नहीं नहीं वो तो बहन ने बड़े प्यार से बोला कि हम बहनें तो कारगिल जा नहीं सकती, वहां युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारा ये विश्वास है हम यहां अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे तो हमारी दिल की दुआ कारगिल जाएगी। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और फिर इनके पास जाओ तो मतलब इनके ना इनकी सच्चाई और वो सादगी जो है ना वो आकर्षित करती है। तो मैंने बोला बहन जी प्लीज बैठ जाइए और मुझे ये बताइए ये मुंबई से कारगिल 3000 किलोमीटर से ज्यादा होगा, ये दिल की दुआ कैसे जाती कारगिल? तो बहन जी ऐसी मुस्कुराने लगी जैसे अभी आप लोग तो मुस्कुरा भी रहे। तो बहन बोलती है विकास भाई आप भगवान को याद करते हैं? मैंने बहन जी हम लोग फौज में हैं, बहुत याद करना पड़ता भगवान को। बोलती है भगवान को मानते हैं? मैंने बहन जी मैं दिल से मानता हूं, क्योंकि आज मैं आपके सामने फौज में बैठा हूं तो मैं भगवान की मदद से बैठा हूं। तो बोलती है अच्छा अच्छा भगवान को जानते हैं? तो मैंने बोला बहन जी इतना जानकारी नहीं है लेकिन दिल से मानता हूं मैं। तो बोला बहन ने, अब बहन ने चौथा सवाल किया और मैं इस संस्था से जुड़ गया। बोलती है विकास भाई ये बताइए, मान लीजिए कोई इंसान है जिसे आप जानते नहीं है, क्या आप उसे याद कर सकते हैं? मैंने बोला कैसे याद करेंगे भाई, थोड़ी बहुत तो जानकारी चाहिए। तो फिर बहन मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि बचपन से लेके आज तक आप भगवान को याद नहीं करते हैं, क्या करते हैं बताओ? तो मैंने तो ऐसे कर दिया बहन जी के आगे, मैंने बोला बहन जी आप ही बताओ हम क्या करते हैं। तो बहन बोलती है आप भगवान से फरियाद करते हो, आप मिन्नतें करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, प्रे करते हो भगवान से। और मुझे बात समझ आ गई। तो मैंने बोला बहन जी एक मिनट रुको, मैंने फोन उठाया, अपने कमांडेंट साहब को फोन किया। कमांडेंट साहब का नाम ही था, वैसे नाम था उनका छोटू सिंह राठौर, लेकिन वो छोटू सिंह नहीं थे, मतलब उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, मतलब ना ये यहाँ जयपुर के थे, पुराने शाही परिवार से बिलोंग करते, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे। तो मैंने उनको फोन किया, सर ऐसे ऐसे बहनें आई हैं, बोलते हैं क्या बकवास है। मैंने बोला सर वो परमिशन मांग रहे हैं। बोलते यहां मत लेके आना डिपो में, हम लोग बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, वहीं जो कराना करा ले। अब ये भी भगवान की मर्जी थी कि उन्होंने मेरे को आदेश दे दिया कि तेरे को जो कराना करा ले। फिर क्या था, मैंने जैसे ही आज्ञा मिली मैंने फोन रखा थैंक यू बोल के, और मैंने सीएचएम को, हमारे जो सीनियर जेसी उनको बोला, उन्होंने फटाफट सभी जितने फौजी थे सबको इकट्ठा करके एक हॉल में बिठा दिया और फिर ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो बहनों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो हमारे बगल में बड़ी दीदी बैठी हुई थी, आदरणीय कुंती दीदी, तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप ये बताओ, आप बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बता रहे हो, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आप कुछ सिखाते हो क्या? क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनसे कुछ प्राप्ति होगी मुझे। तो बहन ने बोला हम राजयोग सिखाते हैं, अगर आपको सीखना है तो हमारे सेंटर आइए। राजयोग मैंने जब शब्द सुना तो मुझे लगा ये रामदेव बाबा टाइप का कुछ आसन प्राणायाम सिखाते होंगे, फूंक फूंक मारना सिखाएंगे, और मुझे फिटनेस का बड़ा शौक था। तो उसी दिन शाम को मैंने ट्रैक सूट पहना और ट्रैक सूट पहन के मतलब सोचा कि आसन प्राणायाम सीखने हैं, और मैं अपने सेंटर से एक किलोमीटर पे था मेरे, तो मैं वहां गया और वहां जाते ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे वरदान मिलता है, आपने ये शब्द सुना आज, ये मैंने कोर्स किया 7 डेज का कोर्स, आज आपने कई बार सर के मैम के भी मुख से एक छत्र छाया का शब्द सुना कई बार, और ये छत्र छाया बस मैं शब्द आपको थोड़ा सा आपको एक महसूस कराना चाहूंगा। और इसके साथ है ना हम क्योंकि समय कम है तो आप जस्ट एक पल के लिए है ना सभी अभी थोड़ा स्ट्रेट होके बैठ जाइए सभी थोड़ा सा। हाँ अच्छा ठीक है थैंक यू। तो अच्छा तो मैं अभी आप सबको ऐसे ही हम जैसे बैठे हैं अभी थोड़ी देर के लिए आप सभी हाँ आंखें, ये जो आपके सामने फोटो लगी है ना, हाँ तस्वीर है, ये नीचे ब्रह्मा बाबा हैं और उनके ऊपर परमात्मा निराकार शिव बाबा। तो आप बहुत प्यार से उस तस्वीर को निहारते हुए उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए और बस अनुभव कीजिए दिल ही दिल में। मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा, बस महसूस कीजिए कि मैं बच्चा, मैं छोटा सा नन्ही सी आत्मा, एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ सितारा, आज बहुत प्यार से अपने पिता जो सुप्रीम रूह है, वो परमपिता सर्वशक्तिवान, वो मेरे सामने है और मैं कितना भाग्यवान, मैं बच्चा आज अपने परमपिता के सामने बैठा हूं। और परमात्मा शिव जो कि निराकार हैं, उनका मैं दिव्य साक्षात्कार कर रहा हूं प्रजापिता ब्रह्मा, पिता श्री ब्रह्मा के आंखों के द्वारा। उनके आंखों में छलकता हुआ प्यार मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि कितने प्यार से स्वयं परमात्मा पिता शिव मुझे निहार रहे हैं। उनकी आंखों से सारा प्यार, प्यार के सागर का मुझे भरपूर कर रहा है। मेरे दिल में अब तक भी जो भी बातें थी, पिछली बातें किसी भी आत्मा के प्रति, वो जैसे कि उस प्यार में धुल गई हों, घुल गई हों। अब मैं एक बच्चा बिल्कुल निश्चल, पवित्र, प्यार से भरपूर, हर एक आत्मा के लिए मेरे दिल में सिर्फ प्यार, मैं उस छत्र छाया को अब महसूस कर रहा हूं। इस हॉल के अंदर बैठे बैठे मेरे मस्तक के ऊपर, मेरे चेहरे पर वो तेज प्रकाश परमात्मा के प्यार का, उसकी शांति का, वो तेज मैं महसूस कर रहा हूं। और यहां बैठे बैठे मैं अपने परिवार को भी देख रहा हूं, वो जहां पर भी स्थित हैं इस देश में, वो सभी भी उस छत्र छाया के नीचे हैं, सभी सेफ हैं, सभी महफूज हैं और परमात्मा के प्यार की तरफ अब खींचे चले आ रहे हैं। मैं और मेरा परिवार परमात्मा के इस प्यार की छत्र छाया के नीचे हूं। बस महसूस करें कि मैं आज से अपने प्यारे पिता के दिल में हूं और मेरे दिल में बस एक वही तस्वीर, परम पिता, परमात्मा, प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान सदा मेरे साथ है, मेरे दिल में है। मुझे किसी बात का डर नहीं है, जो अब तक हुआ वो पास्ट, सब अच्छा हुआ, लेकिन आज से मैं परमात्मा के साथ हूं, वो मेरे साथ हैं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ पलों के, कुछ समय के लिए मैं उनके प्यार को महसूस करता हूं। एकदम हल्का लाइट, ओम शांति, ओम शांति। किया सबने ना महसूस? बस इतना ही सिंपल है ये राजयोग। जब भी आपको मौका मिले जल्दी से ऐसी प्रैक्टिस यहीं पे करके जाना। अभी आपके पास पूरे पूरे 3 दिन हैं। आज शाम को भी आदरणीय शिवानी दीदी आपको बहुत अच्छा अनुभव कराएंगी। कुछ ही देर में हम सभी बहुत भाग्यवान हैं कि आदरणीय जयंती दीदी भी आने वाली हैं, वो हमारे को बहुत अच्छे अनुभव कराएंगी। ये छोटे छोटे अनुभव ये आपका खजाने के तौर पे आपके साथ यहां से जाएंगे, तो बस इन्हें अनुभव करें, इनको साथ में अपने साथ दिल में संजो कर जाएं। और बाकी तो इस संस्था से आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये संस्था नहीं है, एक परिवार है, ईश्वरीय परिवार। ओम शांति।
जोरदार तालियां। भाई साहब ने बहुत सुंदर अपना अनुभव हम सबके बीच रखा है। आप सभी जरूर ये जानते हैं, इस मंच से कई बार बाबा शब्द यूज हुआ है। वो बाबा शब्द उस परमात्मा शक्ति निराकार शिव के लिए यूज होता है। और जैसे आदरणीय गौरबड़े भाई साहब ने कहा, बाबा का कमरा, इट मींस मेडिटेशन रूम। जो आप जब आप हॉल से बाहर जाते हैं तो राइट हैंड साइड बहुत सुंदर मेडिटेशन रूम है, तो वो बाबा का कमरा हम उसको बोलते हैं। तो आप सभी ऐसे ही सुंदर अनुभव करते रहें, अपने जब यहां से अपने अपने स्थान पर जाएं तो आप भी जरूर गूगल पर सर्च कर सकते हैं नियरेस्ट ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र, आप वहां से जुड़ सकते हैं और इस जर्नी को सुंदर तरीके से आप आगे ले जा सकते हैं। तो आज मंच पर हमारे सुशोभित थे हमारी देवी भ्राता देविका रघुवंशी जी, हमारे भाई साहब गौरमोड़े जी, वाइस एडमिरल गौरमोड़े जी, हमारे भाई साहब ब्रिगेडियर हरबीर भाई जी और विकास भाई जी, आप चारों का मैं बहुत बहुत दिल से थैंक्स करना चाहूंगी कि हमारे ऑडियंस को आपने बहुत सुंदर अपने एक्सपीरियंस से इनको लाभान्वित किया। तो आप जोरदार तालियों से हमारे आज के सुंदर इस मंच के सुंदर अनुभवों के लिए थैंक्स देंगे। और आप अभी शिव बाबा को अर्थात परमात्मा की याद में बैठेंगे, उसके बाद आप अपनी टी ले सकते हैं। हाँ, सचान भाई अनाउंसमेंट के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले हम परमात्मा की याद में दो मिनट बैठेंगे।